ये आकाशवाणी दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर अवैध नकदी मिलने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने करदाताओं की सुविधा के लिए 29 से 31 मार्च तक संपत्ति कर संग्रह केंद्रों को खोले रखने का निर्णय लिया है। NDMC स्कूलों में विकास भी विरासत भी विषय पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है। दिल्ली विधानसभा में 30 मार्च को पहली बार हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा और रिजर्व बैंक ने 1 मई से ATM से नकद निकासी पर बैंकों को 2 रुपए की वृद्धि करने की अनुमति दी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर अवैध नकदी मिलने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति वर्मा के घर से आग लगने की घटना के बाद नकदी बरामद की गई थी। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भोयान की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और आंतरिक जांच पूरी करने को कहा। पीठ ने कहा कि अगर आंतरिक जांच में यशवंत वर्मा को दोषी पाया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश के पास प्राथमिकी दर्ज कराने या सरकार से उन्हें हटाने की सिफारिश करने का विकल्प होगा। फिलहाल आंतरिक जांच चल रही है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने करदाताओं की सुविधा के लिए 29 से 31 मार्च तक संपत्ति कर संग्रह केंद्रों को खोले रखने का निर्णय लिया है। NDMC ने बताया है कि ये कदम करदाताओं को अपने कर और बकाया राशि जमा करने में मदद करने के उद्देश्य से उठाया गया है। NDMC के अनुसार भुगतान जमा करने के लिए गोल मार्केट में शहीद भगत सिंह प्लेस काउंटर, आरकेपुरम में पालिका भवन काउंटर और संसद मार्ग में पालिका केंद्र काउंटर खुले रहेंगे। NDMC ने बताया कि इन काउंटरों पर करदाता संपत्ति कर और बिजली पानी के बकाया बिलों का भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त करदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपने कर का भुगतान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रथम देश की विदेश नीति का मूल मंत्र बन गया है। भारत अब न केवल विश्व व्यवस्था में भाग ले रहा है बल्कि भविष्य को आकार देने और उसे सुरक्षित करने में भी योगदान दे रहा है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले भारत की विदेश नीति सभी से दूरी बनाए रखने की थी लेकिन अब सभी के साथ मिलकर काम करने की है।
भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है इंडिया फर्स्ट। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो। आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकाधिकार से अधिक मानवता को प्राथमिकता दी है और समान भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 21वीं सदी के लिए नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। सरकार ने आज देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मदद दी जाएगी।
Historic decision has been taken today. Complete electronics की manufacturing value chain में ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है and this will be over 6 years. बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेज, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा 91,600.
मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की भी मंजूरी दे दी। दिल्ली विधानसभा में आज दिल्ली परिवहन निगम DTC के कामकाज पर CAG रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आम आदमी सरकार पर डीटीसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने डीटीसी का दुरुपयोग और कुप्रबंधन करके इसे चौपट कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को बसें खरीदने के लिए केंद्र सरकार से 233 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन सरकार उन्हें खर्च ही नहीं कर पाई।
केंद्र से पैसे मिले 233 करोड़ रुपए, वो तक भी खर्च नहीं किए गए, वो 233 करोड़ रुपए वो खराब हो गए, अनयूटिलाइज्ड हो गए। जो बसें 2015 में 4344 थी, वो 23 में आकर के केवल 3937 रह गई।
अभी मिली सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने 24 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेजने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि वे न्यायमूर्ति वर्मा को कोई काम न सौंपे। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया है कि सरकार जल्द ही आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए विधेयक लेकर आएगी। आज विधानसभा सत्र में गायों के शोषण को रोकने के प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री सूद ने कहा कि ये विधेयक सभी पक्षों और विधानसभा सदस्यों से सुझाव लेकर लाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC अपने स्कूलों में विकास भी विरासत भी विषय पर पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है। NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि इस पाठ्यक्रम के तहत भारतीय इतिहास और परंपराओं से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। एक रिपोर्ट।
यह पाठ्यक्रम NDMC के स्कूलों में कक्षा 3 से 12 तक पढ़ाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थी प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, योग और ध्यान का अभ्यास करने के साथ साथ अनुशासन और एकाग्रता के लिए मंत्रोच्चारण भी सीखेंगे। NDMC के अनुसार योग और संस्कृत के मौजूदा शिक्षक योग और मंत्रोच्चारण सिखाएंगे। इसके अलावा जरूरत के अनुसार अन्य नियुक्तियां भी की जाएंगी। स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कार्यशाला भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें विद्यार्थियों को AI में नैतिकता और तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया है कि विधानसभा परिसर में पहली बार हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर 30 मार्च को दिल्ली विधानसभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और विधानसभा को सजाया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि इसे एक परंपरा के रूप में शुरू किया जा रहा है।
30 मार्च को यहाँ हिंदू नववर्ष संवत्सर 2082 के शुभ आगमन पर दिल्ली की विधानसभा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरी विधानसभा को सजाया जाएगा और इसे परंपरा के रूप में आगे लेकर जाया जाएगा।
रिजर्व बैंक ने 1 मई से ATM से नकद निकासी पर बैंकों को 2 रूपए की वृद्धि करने की अनुमति दे दी है। इससे शुल्क को बढ़ाकर 23 रूपए प्रति लेन देन कर दिया गया है। ग्राहक अपने बैंक के ATM से हर महीने 5 बार बिना किसी शुल्क के धन निकासी कर सकते हैं। इसके बाद हर निकासी पर ग्राहक से प्रति लेन देन अधिकतम 23 रूपए का शुल्क लिया जा सकता है। आज दिल्ली समेत देशभर में जुमातुल विदा हर्षोल्लास से मनाया गया। जुमातुल विदा रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। इस दिन को अलविदा जुमा भी कहा जाता है। ये रमजान के महीने के समापन और ईद की शुरुआत का प्रतीक होता है। आज दिल्ली की जामा मस्जिद, फतेहपुर मस्जिद और सुनहरी बाग मस्जिद समेत सभी मस्जिदों में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। संसद में दिनभर के कामकाज के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अब 1 अप्रैल 2025 को होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदक 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
मंत्रालय के अनुसार भारत में रहने वाले ऐसे बच्चे जो स्वदेशी नागरिक हैं और 31 जुलाई 2025 तक 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के आयु वर्ग में शामिल हैं, वे ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा कला और संस्कृति में उपलब्धियों के लिए असाधारण बालक बालिकाओं को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करता है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आकर्षिता सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अब सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र पांचाल। दिल्ली विधानसभा में आज कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने से पहले कई बार कोरम के अभाव की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 15 मिनट विलंब से शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्यवाही शुरू होने में विलंब होने को लेकर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्षी सदस्यों के मौजूद नहीं रहने की वजह से कोरम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सत्ता पक्ष को भी निर्देश दिया कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और सदन में उपस्थित रहें। सदन की कार्यवाही के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से 24 मार्च को प्रस्तुत दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर रिपोर्ट पर चर्चा की गई। चर्चा में भाजपा के कई सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें सतीश उपाध्याय, संजय गोयल, तरविंदर सिंह मरवाहा, अशोक गोयल और कई अन्य सदस्य शामिल थे। दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने भी डीटीसी के कामकाज पर पेश की गई सीएजी रिपोर्ट की कई खामियों को उजागर करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सदस्यों के चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में वक्तव्य देते हुए कहा कि डीटीसी ने कोई बिजनेस प्लान या दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं की थी। डीटीसी का बेड़ा 4,344 से घटकर 3,937 रह गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान डीटीसी इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई में भी देरी के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने में नाकाम रही। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि 31 मार्च 2023 तक लो फ्लोर बसें, यानी जिनकी मियाद खत्म हो चुकी हैं, उनकी संख्या बढ़कर लगभग 45% हो गई। डीटीसी को वर्ष 2015 से 2022 की अवधि के दौरान 14,198 करोड़ रुपए का बड़ा वित्तीय घाटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर डीटीसी के मामले पर हमला बोलते हुए कहा कि रूट प्लानिंग में भी सीएजी रिपोर्ट में कमियां पाई गईं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 233 करोड़ रुपए नई बसों की खरीद के लिए दिए थे, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी पीएसी को भेजने की मांग की। मुख्यमंत्री ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा जारी रखने को लेकर भी कहा कि उनको ये सुविधा मिलती रहेगी। सरकार उनकी सुविधा के लिए कार्ड जारी करेगी, जिससे कि उनको सफर करने को टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने की भी बात कही। इससे पहले दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जिसमें विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली की भाजपा सरकार से सवाल किया कि महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 की सहायता राशि कब प्रदान की जाएगी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक पोस्टर और बैनर लेकर सदन में पहुंचे। इसके बाद सदन में दोनों पक्षों की तरफ से हुए शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के कई सदस्यों को सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने पर मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकाल दिया। प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान जब सुरेंद्र कुमार ने सवाल किया, तो सदन में हुए हंगामे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सबसे पहले संजीव झा को कार्यवाही से बाहर किया गया। इसके बाद कुलदीप कुमार, विशेष रवि, मुकेश कुमार, अहलावत, जनरल सिंह, प्रेम चौहान, अजय दत्त, वीरेंद्र कादियान, सुरेंद्र कुमार, सहीराम पहलवान, पुनर्दीप सिंह सहानी, अनिल झा, सुरेंद्र कुमार आदि को भी मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकाला गया। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर अवैध नकदी मिलने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने करदाताओं की सुविधा के लिए 29 से 31 मार्च तक संपत्ति कर संग्रह केंद्रों को खोले रखने का निर्णय लिया। और दिल्ली विधानसभा में 30 मार्च को पहली बार हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।